आज हम लोग पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक होगा न। चार तीस सत्रह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्यवर्ष सहस्राणाम सहस्रम अहत ओजसः सहस्रमहतौजसः भौमान भोक्षथ भोगान वै दिव्यान च अनुग्रहात् मम। दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्षत भोगान् वै दिव्यांश्चानुग्रहान् मम। दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्षत भोगान् वै दिव्यांशानुग्रहान् मम। दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्षत भोगान् वै दिव्यांशानुग्रहान् मम। माता जी दिव्य स्वर्गिक वर्ष सहस्राणाम हजारों का सहस्रम एक हजार अहत अपराजित रहकर ओजसह तुम्हारा बल भौमान इस संसार का भोक्षथ भोगोगे भोगान सुख वही निश्चय ही दिव्यान स्वर्ग लोक का च भी अनुग्रह कृपा से मम मेरी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारो, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10,00,000 दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। तात्पर्य, भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह स्वर्गिक के स्वर्ग लोक के काल माप के अनुसार परिगणित होती है। इस पृथ्वी लोक के हमारे 6 मास स्वर्ग लोक के 12 घंटों के तुल्य है। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास के और 12 मास 1 वर्ष के तुल्य है। प्रचेताओं को स्वर्ग लोक की इस परिगणना के अनुसार 10,00,000 वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ। यद्यपि यह आयु अत्यंत दीर्घ है किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वर प्रदान दिया गया। यदि कोई इस संसार में अनेक वर्षों तक जीवित रहना चाहता है तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वर मिला। यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहें। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग भगवान के उक्ति पर विचार कर रहे हैं, भगवान के उक्ति को सुन रहे हैं। भगवान प्रचेताओं के तपस्या से, उनके शील स्वभाव से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए हैं। प्रचेता उनके दर्शन से बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं और भगवान अपने गंभीर वाणी से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको वर दे रहे हैं। वर के विषय में हम लोग कई एक दिन से सुन रहे हैं, कई एक विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसी क्रम में मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। आप पहले सुन चुके हैं कि भगवान अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, खास करके भाइयों में सौहार्द है, मेल है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न है, उनके तपस्या से प्रसन्न हैं, वे रुद्र गीत का पाठ किए उससे प्रसन्न हैं और प्रसन्न हो करके कई एक प्रकार का वर दे रहे हैं। सबसे पहले वे कहे कि जो तुमका स्मरण करेगा उनके भाइयों में प्रेम बढ़ जाएगा, तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार होगा और तुमको ब्रह्मा के समान पुत्र उत्पन्न होगा। यह ही भगवान यह बात कहे कि ब्रह्मा के समान पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो गुण में ब्रह्मा से कम नहीं होगा और सृष्टि का खूब विस्तार करेगा। इस बात को सुनकर प्रचेता लोग झेप गए कि अभी विवाह नहीं हुआ, भगवान पुत्र की बात कह रहे हैं। भगवान तुरंत उनको बतलाए कि तुमको बहुत सुंदर पुत्री कन्या की प्राप्ति होगी, उसको स्वीकार करना। और इसके साथ ही भगवान कह रहे हैं कि दिव्य वर्ष सहस्राणाम सहस्रम अहत औजस भोगान भोक्षत भोगान वै दिव्यंशानुग्रहान मम। कह रहे हैं कि हमारे कृपा से, हमारे अनुग्रह से तुम लोग हजारों वर्ष तक पृथ्वी के भोग का भोग करोगे और स्वर्गीय भोग का भी। और एक बात कह रहे हैं कि अहत औजस तुम्हारे बल कम नहीं होगा, भोग की शक्ति कम नहीं होगी। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि अनेक व्यक्ति हैं कि भोग की लालसा है लेकिन भोग सुलभ ही नहीं है, केवल मन में लालसा रह जाती है। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको भोग की प्राप्ति है लेकिन भोग भोगने की शक्ति नहीं है। खाने पीने की बहुत सामग्री है लेकिन वे खा नहीं सकते। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम लंबे समय तक पृथ्वी का भोग भोगोगे और बाद में प्रकृति के परे दिव्य भोग का भी अवसर मिलेगा और तुम लोगों का भोग की शक्ति कम नहीं होगी। और कितने दिन तक भोग भोगने की बात है तो कह रहे हैं कि दिव्य वर्ष सहस्राण सहस्रम अहत औजस। श्लोक के शब्द पर ध्यान देंगे तो दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। सहस्राणाम सहस्रम, एक हजार, हजारों का एक हजार, मतलब अब हजार से गुणा कीजिए और हजार से गुणा कीजिए, जितना आएगा तो उसको कहेंगे। दूसरे जैसा कि अर्थ श्रील प्रभुपाद जी किए हैं, दूसरे ढंग से अर्थ करने पर अर्थ निकलेगा कि दिव्य वर्ष सहस्राणा, आयु के विषय में, भोग की अवधि के विषय में कह रहे हैं कि स्वर्गीय माप से हजारों वर्ष तक, और सहस्रम भोग के विषय में कह रहे हैं कि अनंत प्रकार का भोग। तो वर्ष सहस्राणम सहस्रम केवल समय के लिए यूनिट लेंगे तो इसका अर्थ होगा कि 10 लाख वर्ष। लेकिन अब इसको दो खंड में करेंगे कि हजारों वर्ष और हजारों प्रकार का भोग भोगोगे, सहस्रम भोग के साथ आ जाएगा। सहस्रम भोगान, अनेक प्रकार के भोग। और इस अवधि के विषय में आप ध्यान देंगे तो दिव्य वर्ष सहस्राणा, ये सहस्र बहुवचन में है, बहुवचन में प्रयोग है तो इसका अर्थ एक हजार नहीं किया जा सकता, 2000 नहीं किया जा सकता, 3000 किया जा सकता है या 3000 से अधिक किया जा सकता है। 3000 से अधिक कितना भी कर सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी वेद का उदाहरण दे करके स्थापित कर रहे हैं कि यह दिव्य वर्ष सहस्राणाम का अर्थ है कि 3000 वर्ष तक, लेकिन स्वर्ग के माप से। और हम लोगों का जो टाइम है और स्वर्ग का टाइम है तो उसका इक्वेशन इस प्रकार है कि हमारा 6 महीना बीतता है तो देवता का 1 दिन होता है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम लंबे समय तक भोग का भोग करोगे और तुम्हारी शक्ति छीण नहीं होगी, भोग करने की क्षमता कम नहीं होगी। तुरंत मन में एक प्रश्न उठेगा कि भगवान ये भोग भोगने की सुविधा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मेरी कृपा है, मेरी कृपा से भोग भोगोगे, ये क्या कृपा है? ये भोग में समय लंबे समय तक लगे रहना ये क्या कृपा है? लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए भोग के विषय में कि जब तक हमारी वासना समाप्त नहीं होगी, हमारा कषाय दूर नहीं होगा, भोग के प्रति राग दूर नहीं होगा, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस कषाय को दूर करने के लिए 2 उपाय हैं। या तो व्यक्ति विषय का भोग करता है तो भोग की कटुता का अनुभव हो जाता है, तब स्वतः ही विरति आ जाती है, वैराग्य आ जाता है। जब भोग भोगते हैं, लंबे समय तक भोग भोगेंगे तो स्वतः ही भोग से विरति हो जाती है और हमारा भोग के प्रति राग दूर हो जाता है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि हम जितना भोग भोगते हैं और उतना ही हमारी वासना बढ़ती जाती है। तो अलग अलग कैंडिडेट हैं, उन पर अलग अलग ये सिद्धांत लागू होता है। खास करके जो विरक्त हैं तो उनका कषाय दूर होता है अपने इंद्रियों को भोग से रोकने से, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में है तो भोग भोगने से उनका कषाय दूर हो जाता है, राग दूर हो जाता है। और जब तक यह राग दूर नहीं होगा तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आप नारद जी के प्रसंग में पढ़ते हैं कि नारद जी जब उत्तर दिशा में चले गए और सुंदर प्रकृति के छटा को देख करके उनका मन भगवान के तरफ लग गया, सत्वगुण के वृद्धि से भगवान के तरफ उनका मन धावित हो गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान करने लगे। वो ध्यान कर रहे थे तो उनको बहुत सुख मिल रहा था, स्पष्ट रूप से भगवान के रूप का साक्षात्कार हो रहा था और उसको देख करके उनको बहुत आनंद हो रहा था। और तब तक भगवान अपने उस रूप को तिरोहित कर दिए, उनके हृदय से हटा दिए। अब जब ही रूप हृदय से हटा तो नारद जी बहुत व्याकुल हो गए, बहुत व्यग्र हो गए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी और भगवान का सकृद्यत दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ, कहे कि हे नारद, हे निष्पाप, एक बार मैं अपना साक्षात्कार करा दिया केवल इसलिए कि तुम इस रूप की कामना करो, क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुजोगिना। ऐसे योगी, ऐसे साधक जिनका कषाय, जिनका राग अभी पका नहीं है, और वैसे कुजोगियों के लिए हमारा दर्शन दुर्लभ है। और जब व्यक्ति भगवान के रूप की कामना करता है तो जो भी हृदय में कामना है तो समाप्त हो जाता है। जब भगवान के रूप की लालसा जग जाती है तो व्यक्ति के सर्वन मुंचते हृच्छया, व्यक्ति सारे कषाय को समाप्त कर देता है। ओ भगवान जो भोग प्रदान कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि प्रचेताओं का कषाय पूरा पूरा समाप्त हो जाए, उनको भक्ति में लगाने के लिए ही ये भोग भी दे रहे हैं। तो भगवान के व्यवहार पर विचार कीजिए, ये भगवान प्रचेताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनको बहुत सुंदर रमाकांत प्रभु का मंथन लगा, उनका चिंतन लगा कि भगवान के स्वरूप पर विचार कीजिए कि भगवान एक वर नहीं दे रहे, दो वर नहीं दे रहे, अनेक वर दे रहे हैं, अपने से वर दिए। और इसके बाद भगवान प्रचेताओं से कह रहे हैं कि वरम ऋणीस्व, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, कई एक वर अपने से दे दिए। और इसके बाद स्वतंत्रता भी दिए कि वरम ऋणीस्व, वर आप लोग मांगिए जो भी मांगना हो। तो प्रचेता तो भगवान के दर्शन से इतना संतुष्ट थे, जब वर मांगने के लिए कहे भगवान तो कहने लगे कि हम आपका दर्शन कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा वर है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि पारिजातन जसा लब्ध है, कोई भौंरा है कई एक पुष्प पर मधु के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन उसको कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, पारिजात पुष्प की प्राप्ति हो जाए, तब इधर उधर नहीं जाएगा, उसी में संतुष्ट हो जाता है। जो कह रहे हैं कि जब आपका चरण हमको प्राप्त हो गया तब इसको छोड़ करके हम विषय की मांग क्यों करेंगे, लेकिन फिर भी वे एक वर मांग रहे हैं, वर देना चाहते हैं और हमारी इच्छा है एक वर दीजिए। भवत प्रसंगा न संग स्यात्, आप में जो आसक्त हैं, आपके जो प्रेमी हैं, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो। भगवान वर देने के लिए कह रहे हैं तो प्रचेता लोग वर मांगे कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिले। वो भगवान बहुत उदार हैं, अपने से भी वर दिए और वर मांगने का प्रस्ताव भी दिए। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब ही भगवान प्रस्ताव देते हैं तो भक्त लोग उसका लाभ लेते हैं, वर मांगते हैं। भगवान से कुछ मांगना यह दोष नहीं है, भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन केवल भगवान से ही मांगना चाहिए। मांगना दोष नहीं है, भगवान से मांग रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब देवी देवता फलान ढेकान इससे उससे मांगने लगते हैं, यह बहुत भारी दोष है। भाई किसी के मन में कामना है, कोई इच्छा है तो मांगेगा ही, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन सीधे भगवान से मांगिए और किसी से मत मांगिए। तो जहाँ भी वर मांगने का अवसर आता है तो भक्त लोग वर मांगते हैं। प्रहलाद जी से वर मांगने के लिए भगवान कहे, जो कह रहे हैं कि क्या हमको प्रलोभन दे रहा है, अरे हम तो पहले से ही अपने कामना से तंग हैं और फिर ऊपर से प्रलोभन दे रहे हैं, ये आपकी क्या लीला है, वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांग रहे हैं कि हमारे हृदय से कामना का बीज ही समाप्त हो जाए। और भक्त लोग अपने स्तर से वर मांगते हैं। प्रचेता लोग कह रहे हैं कि अरे जो भक्त तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे तीर्थों में क्यों भ्रमण करते हैं, पद्भ्याम अपने दोनों चरण से पैदल घूमते रहते हैं, क्यों घूमते हैं, तीर्थानाम पावनिच्छया, तीर्थों के भी इच्छा होती है कि हम भक्तों के संग प्राप्त करें, हम भी पवित्र हों। कभी कभी ऐसा अनुवाद कर दिया जाता है कि तीर्थानाम पावनिच्छया, तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से भक्त लोग पैदल विचरण किया करते हैं, लेकिन इसका आशय समझना चाहिए। तीर्थानाम पावनिच्छया, तीर्थों की इच्छा होती है कि हम भी पवित्र हों, हमारे पास भी भगवान के प्रेमी भक्त आवे, तो उनके इच्छा को देह करके भक्त लोग तीर्थ में चले जाते हैं। अपनी इच्छा से तीर्थों को पवित्र करने के लिए नहीं जाते हैं, तीर्थों की इच्छा होती है कि हमारे घर में आवे, हमारे को संग दें, तो भक्त लोग जाते हैं। जो भीतस्य किम न रोचेत, जो इस भव बंधन में पड़े हुए हैं और इस भव बंधन से भयभीत है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए आपके भक्तों का संग क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो वे प्रचेता लोग भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मांग रहे हैं। तो भगवान बहुत सारे सुविधा अपने से भी दे देते हैं, और कई एक सुविधा के लिए च्वाइस है, इच्छा हमारी, हमारे ऊपर है, हम वर मांग सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रचेताओं की स्थिति में कि प्रचेता लोग कोई भौतिक कामना नहीं किए, भगवान के दर्शन से अपनी संतुष्टि व्यक्त किए, हम पूर्ण तृप्त हैं, और वर केवल यह मांगे कि हम अपने कर्म बस किसी योनि में जाएं, हमको आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले, यही वर प्रदान कीजिए। और भगवान सुविधा देते हैं, अपने से कई एक चीज दे दिए। जहाँ तक वर मांगने की बात है, तो हम लोग जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, भगवान के कृपा से वृंदावन रहने का अवसर मिल गया, और थोड़ा विचार कीजिए कि हम पर कितनी भारी कृपा है। भगवान कृपा करके वृंदावन रहने का अवसर दे दिए, अब वृंदावन रहने का अवसर दिए तो वृंदावन का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ स्वतः ही भक्तों का संग मिल जाता है। प्रचेता लोग जो कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, वृंदावन में स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कान की स्थापना किए, इस्कान के स्थापना के कई एक उद्देश्य हैं, सेवन पर्पस बहुत प्रसिद्ध है, उसमें एक उद्देश्य यह है कि भक्तों का संग प्राप्त हो, भक्तों के एसोसिएशन के लिए इस्कान की स्थापना की गई। और हम लोग देख रहे हैं कि स्वतः ही भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, भगवान के अनेक प्रेमी भक्त हम लोगों के सेंटर में ही आ जाते हैं, यहीं उनका संग प्राप्त हो जाता है। वो अपने घर में भी संग प्राप्त है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वृंदावन में दर्शन के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, तो भगवान के अनेक प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, उनको नमस्कार करने का अवसर मिलता है, उनके स्पष्ट चरण छूने का अवसर मिलता है, हम तो कई के संतों का चरण स्पर्श कर लिए परिक्रमा मार्ग में, उनके आश्रम में नहीं गए। और एक चीज है और ध्यान देने की बात है कि भगवान केवल ये जो सचल संत हैं इन्हीं की व्यवस्था नहीं दिए हैं। वृंदावन प्राप्त हुआ है तो यहाँ अनेक अवसर है कि भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाता है जो मनुष्य शरीर में है। लेकिन भगवान केवल इतनी ही सुविधा नहीं दिए जो मनुष्य शरीर में है, और उनसे मिलने में कभी कभी कठिनाई भी हो जाती है। अपॉइंटमेंट लो, उनकी व्यस्तता है, हम 24 घंटा उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन भगवान कृपा करके वृंदावन में यह सुविधा दिए हैं कि संतों को ऐसे ऐसे जगह पर स्थापित कर दिए हैं कि 24 घंटा हम उनका संग कर सकते हैं। आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध का 15वां अध्याय देखेंगे, उसमें एक श्लोक आता है कि तमोपहत्ते तर्जन्म यत् कृतम्। यद्यपि लीला के दृष्टि से इस श्लोक का दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है, लेकिन श्रीपाद जीव गोस्वामी एक अर्थ करते हैं कि तमोपहत्ते तर्जन्म यत् कृतम्। भगवान ने वृक्षों को जन्म दिए हैं, वृंदावन में वृक्षों का जन्म दिए हैं। किस लिए जन्म दिए? तमोपहत्ते, जो व्यक्ति वृक्ष का दर्शन करेगा, उनको प्रणाम करेगा, तो उसका सब प्रकार का बंधन दूर हो जाएगा, किसी प्रकार का बंधन नहीं रह जाएगा। तो भगवान हम लोगों को सुविधा दिए हैं कि पद पद अनेक भक्तों का संग हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे तरफ से है कि हम कितना लाभ ले रहे हैं। तो जगह जगह पर संतों को भगवान यहाँ वृक्ष के रूप में बैठा दिए, आउट ऑफ स्टेशन में नहीं होंगे, जहाँ हैं आपके तरफ से है, जब इच्छा हो तब उनसे संपर्क कर लीजिए। तो ये जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े संत हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, उद्धव जैसे भगवान के प्रेमी भक्त यहाँ वृक्ष के रूप में अवस्थित है। तो भगवान बहुत भारी कृपा किया, अपने से ही ये कृपा कर दिए। और जो वृंदावन के भक्त हैं तो इन वृक्षों को नमस्कार करते हैं। वृंदावन महिमामृत में एक श्लोक है, ये संभवतः 5वें शतक का 21वां श्लोक है, तो कह रहे नमो दिव्यम वृंदावन तरु लताभ्य, कि हम तो वृंदावन के तरु और लता को नित्य नमस्कार कर रहे हैं। करुणया किरंतेभ्य सर्वानपि च पुरुषार्थान सकृदपि विलोकात् संस्पर्शनात् श्रवण कथनात् च स्मरणतः, कि हम तो नित्य नमस्कार कर रहे हैं वृंदावन के वृक्षों के, और उन वृक्षों का विशेषण दे रहे हैं, उनकी विशेषता बतला रहे हैं कि एक बार भी कोई उनको उनका दर्शन कर लिया, उनका स्मरण कर लिया, उनका स्पर्श कर लिया, उनके विषय में कुछ बोल दिया या उनके विषय में कुछ सुन लिया, कितना आइटम दे रहे हैं विलोक का, मात्र दर्शन करने से, संस्पर्शना स्पर्श करने से, श्रवणा जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं या आप लोग श्रवण कर रहे हैं वृक्षों के विषय में, लता और वृक्ष के विषय में श्रवण करने से, या कथना जैसे मैं कथन कर रहा हूँ, या स्मरणतः उनका स्मरण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सकृदपि एक बार कीर्तन किए, एक बार स्मरण किए, किरंतिभ्य सर्वान च सर्वानपि च पुरुषार्थ, एक बार स्मरण किए, एक बार दर्शन के स्पर्श किए, और उसका प्रभाव होता है कि सर्वानपि पुरुषार्थन किरंतिभ्य, वे अपने करुणावश मनुष्य का जो भी पुरुषार्थ है, ये 4 पुरुषार्थ हो या 5 पुरुषार्थ हो, सर्वानपि सारे पुरुषार्थ को प्रदान कर देते हैं, वे करुणा से युक्त हैं। तो कह रहे हैं कि विभांति व्यापारे प्रकृति रस सारात्म महस, उनका ऐसा प्रभाव है, प्रकृति से परे हैं, अप्राकृत हैं, और एक बार भी कोई उनको नमस्कार कर देता, स्पर्श कर देता है, तो उसके सारे पुरुषार्थ को करुणा बस पूरा कर देते हैं। तो भगवान वृंदावन में यह सुविधा दिए, स्वतः सुविधा दिए, तो इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। वृंदावन में वास कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नमो नित्यम, हम तो नित्य नमस्कार कर रहे हैं। ये वृंदावन के वृक्षों को नमस्कार करना ये बहुत भारी सिद्धि का कारण है, बहुत भारी लाभ है। कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं वृक्षों के दर्शन मात्र से, उनको नमस्कार करने से, उनका कीर्तन करने से, उनका आलिंगन करने से, और वृक्षों से संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे ये मनुष्य शरीर में जो संत हैं उनसे आप संपर्क स्थापित करते हैं, तो यहाँ जो वृक्ष रूप में अवस्थित संत हैं उनसे भी आत्मीयता बढ़ानी चाहिए, अपने संबंध को विकसित करना चाहिए। यह भगवान सुविधा दिए वृंदावन वासियों को। और इसके बाद भी अभी आपको वर मांगने के लिए अवसर खुला है। हम लोग कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि शरीर से हम लोग वृंदावन आ गए, शरीर तो वृंदावन में है लेकिन मन से परेशान रहते। बहुत लोग कहते रहते मन नहीं लग रहा है, तो मन भगवान आदेश दे रहे हैं गीता में कि मय एव मन आधत्स्व, भगवान का आदेश है कि मन मुझ में लगाओ, लेकिन जीव की मजबूरी है, परवशता है कि मन नहीं लग रहा है। उसका कारण यह है कि मन वासना से जकड़ा हुआ है। तो यहाँ भक्तों को यह छूट है कि अपने से मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये भगवान को ही जिम्मेवारी दे दिया जाए कि वही मन लगावे। क्योंकि भगवान की विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों को कुछ भी प्रदान करते हैं। भगवान का यह वचन है कि कह रहे हैं कि जनु कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे भक्त हैं तो उनके लिए हमें कुछ अदेय नहीं है, मतलब कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो हम अपने भक्तों को न दे दे। जन कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु नहीं भोरे, कह रहे हैं कि यह विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये सदैव विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। और हमारी कठिनाई है कि भगवान आज्ञा दिए कि अपना मन मुझ में लगाओ, लेकिन मन तो जहाँ से आया है वहीं जकड़ा हुआ है। तो यह जिम्मेवारी हम भगवान के ऊपर दे सकते हैं, यह शास्त्र सम्मत है। और वृंदावन महिमा अमृत में एक श्लोक आता है, ग्रंथकार कहते हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतर निबद्धम, अपने मन के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतर निबद्धम, हमारा जो मन है सैकड़ों सैकड़ों मजबूत दुर्वासना के रस्सी से जकड़ा हुआ, बांध दिया गया, वहाँ से हट ही नहीं रहा। वृंदावन वास कर रहे हैं लेकिन मन अभी पीछे जहाँ वहीं घूम फिर करके चला जाता है, नहीं वहाँ से हट रहा है। तो कह रहे हैं कि दुर्वासना, ये जो दुर्वासना है सुदृढ़ रज्जु सतर निबद्धम, मोटे मोटे तीन तीन कलम के रस्सी से या नौ नौ कलम के रस्सी से खूब बांध दिया गया, लेकिन कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप इस मन को अपने बल से खींचिए। दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतर निबद्धम आकृष्य सर्वत इदम स्वबले न कृष्ण, सब जगह से कृष्ण इसको अपने बल से खींचिए। भाई मन तो कहीं लगेगा, खींच करके क्या करेंगे, तो कह रहे हैं वृंदावने विहरत, आप अपने चरणों में हमारे मन को लगा दीजिए, अपने चरणों के नज़दीक ला दीजिए। भाई प्रश्न होगा कि अपने चरणों का इसका क्या अर्थ है, भगवान के अनेक रूप हैं, स्थविष्ट रूप है, परमात्मा रूप है, ईश्वर रूप है, वे किस रूप के नज़दीक चाहते हो, तो कह रहे हैं वृंदावने विहरत सह राधयाते पादा रविंद सविधम नय मानसम में, एक वृंदावन में आप राधा रानी के साथ विहार करते हैं तो उस वृंदावन विहारी के चरणों के नज़दीक हमारे मन को ला दीजिए। ब्रज विलासी अपने चरणों के नजदीक हमारे मन को लाए। वृंदावने विहरत सह राधयाते, आप राधा रानी के साथ वृंदावन में विहार करते हैं तो उन्हें अपने चरणों के साथ सब जगह, अपने चरणों के पास सब जगह से हमारे मन को खींच करके ला दीजिए। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान ने जब यह वचन दिए हैं कि हमारे लिए कोई अदेय नहीं है, हमारे जो भक्त हैं तो उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं, सब कुछ मैं प्रदान करता, तो अवसर पा करके भक्त लोग भगवान पर जिम्मेवारी देते हैं कि हमारे मन को अपने पास लाइए और जो लीला में रत रूप है उसके नज़दीक लाइए। और भगवान वृंदावन में विविध प्रकार से विहार करते हैं, कई एक उनकी छवि है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे वृंदावन महिमामृत में है 16वें शतक का दूसरा श्लोक है, कह रहे हैं ग्रंथकार कि एकांत कुंज भवन नुनयन राधाम अंके निधाय करज रलकान विविच्य, कह रहे हैं कि कृष्ण एकांत कुंज भवन, एक कुंज कहीं भवन है, कुंजों की विशेषता है कि भगवान के लीला लायक स्थान का निर्माण कर देती हैं। तो कह रहे हैं कि एकांत कुंज भवन, ये कुंज वृक्ष लता ही जो भवन के रूप में है एकांत है, तो एकांत कुंज भवन नुनयन राधा, बहुत अनुनय करके राधा रानी को अपने गोद में स्थित कर लिए। अनुनयन, राधा रानी बहुत आसानी से कृष्ण के गोद में आने वाली नहीं है, बहुत अनुनय करना पड़ता है, बहुत मनाने पर भी आती हैं। भगवान तो कहते हैं कि राधा रानी से कि राधा रानी को मनाने में, तुमको मनाने में हमको जितना परिश्रम होता है उतना परिश्रम अब तक कभी नहीं हुआ, मैं वेद का उद्धार कर दिया, पृथ्वी को रसातल से ला दिया, मधु दैत्य का वध कर दिया, लेकिन हमको उतना परिश्रम नहीं हुआ, अरे तीनों लोक को नाप दिया, बलि से स्वर्ग मांग लिया, लेकिन हमको उतना परिश्रम नहीं हुआ, समुद्र पर पुल बांध दिया, रावण का वध किया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं होता है जितना तुमको मनाने में होता है। लेकिन कह रहे हैं कि पता नहीं इसमें क्या रस है तुमको मनाने में, क्यों सब परिश्रम भूल जाता है, इससे मन नहीं हटता है। तो कह रहे हैं कि एकांत कुंज भवन है नुनयन राधा निधा अंके निधाय, वे राधा रानी का मनुहार करके उनको मना करके गोद में स्थित किए हैं, गोद में लेकर अलग करजय रलकान विविच्य, और कृष्ण राधा रानी के बाल को जो बिखरा हुआ है तो उसको करजय अपने अंगुली से ही उसको संवार देते हैं। कृष्ण बहुत दक्ष हैं और उनका बहुत रुचि है, बहुत मन लगता है बाल संभालने में, वे राधा रानी का बाल संभालते रहते हैं और इतने दक्ष हैं कि कंघी की आवश्यकता नहीं है, करजय अपने अंगुलियों से ही राधा रानी के बाल को संवार करके और चुंबन मोह वे बार बार चुंबन कर रहे हैं, किसका चुंबन कर रहे हैं, कनक पंकज कांति वक्त्रम, राधा रानी के मुख का चुंबन कर रहे हैं और वह मुख कैसे कनक पंकज कांति, मानो कि सोने का कमल हो उसकी जैसी कांति है वैसे ही राधा रानी के मुख की कांति है, चुंबन मोह गोद में स्थित किए हैं, बार बार चुंबन कर रहे हैं, स्वयं हरि पुलक पूर्ण बपुह प्रियो में, यह भगवान के जो रूप है कैसा रूप है कि राधा रानी का स्पर्श पाते हैं, चुंबन करते हैं, पुलक पूर्ण बपुह उनके शरीर में एक एक रोमा खड़े हो जाते हैं, इतना आनंद अनुभव करते हैं, इतना सुख अनुभव करते हैं कि एक एक रोमा खड़ा हो गया है, पुलक पूर्ण बपुह पुलकावली खड़े हैं, सब पुलक पूरे शरीर में पुलक है, तो स्वयं हरि है प्रियो में, यही हरि का रूप हमको बहुत प्रिय है। तो भगवान से प्रार्थना करने पर उस रूप के नज़दीक हमारे मन को ले जाएंगे। भगवान के अनेक लीलाएं हैं, जो उदाहरण के लिए एक श्लोक उद्धृत किया, तो भगवान लीला करते रहते हैं और भक्त सीधा प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन बहुत जकड़ा हुआ है दुर्विषय में, आप इसको खींच करके और अपने चरणों के पास जो राधा रानी के साथ लीला में रत है उस रूप के पास, उन चरणों के पास हमारे मन को लाइए। तो अवसर पा करके भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, वर मांगते हैं, और खास करके जो वृंदावन में वास कर रहे हैं और उनके लिए ये वर मांगना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हम अपने से अपने मन को भगवान में नहीं रख रहे हैं तो भगवान पर हम डाल देंगे, भगवान के पास सर्व शक्ति है, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। और भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, भगवान के पास बहुत शक्ति है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा उल्लेख है कि अपना बल दिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, वे अपने शक्ति को दिखाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। वो भगवान किसी के मन को आकृष्ट कर लेते हैं। भगवान में यह क्षमता है कि एक बार बोल दिए, कोई एक बार उनका वचन सुन लिया तो गिर्भिष्टा स्मरता चित्तम, अब वो उसी का स्मरण करते रह जाएगा, उसके चित्त में दूसरे चीज की स्फुरणा ही नहीं होगी। और इच्छता क्रिया, जो भगवान के चरण चिन्ह को देख लिया तो उसकी सारी क्रिया समाप्त हो जाती है। और भगवान इसी बल को दिखाने के लिए प्रदर्शन कर दिए, अवतार लिए। भगवान में यह बल है तो जो साधक है तो भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हमारे मन को आप ही खींच करके अपने चरणों में लगा लीजिए। इस प्रकार मैं यह कह रहा हूँ कि भगवान बहुत सारी सुविधा अपने से ही प्रदान कर देते हैं और बहुत चीज के लिए अवसर प्रदान करते हैं, च्वाइस देते हैं, इच्छा चाहते हैं तो अवसर पा करके हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। भगवान को यह भार नहीं लगता है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और भगवान हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण।